जी आगे देखेंगे आयत नंबर 26 26 से अल्लाह सुबहाना ताला अब यहाँ मज़ीद बताते हैं कुछ बातों को। असल में 26 आयत का ताल्लुक तो पीछे से इसका जिक्र हो गया था, लेकिन मैं यहीं से दोबारा शुरू करूँगी ताकि आप लोग इसको आगे से लेकर चले। अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, यानी उसको नपा तुला रिज़्क देता है। फिर क्या होता है, वह फरीहू बिल हयात दुनिया, और वो खुश होते हैं या मगन हैं दुनिया ही की ज़िंदगी में, जबकि वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं सिवाय थोड़े से फ़ायदे के। पिछली आयतों में हमने सूददार की बात पढ़ी और वो किरदार जो बुरे काम करता है, जो हकीकत में वो काम करने के थे उसको छोड़कर दूसरे काम करने वाला है। तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जितने मर्जी गुनाह कर लें, जितनी मर्जी भाग दौड़ उनकी इस दुनिया के लिए हो जाए, दुनिया उनको मिलनी उतनी ही है जितनी उनके नसीब में। अल्लाह सुबहाना ताला के रिस्क को अपने हाथ में रखने की वजह क्या है? अगर यहाँ लफ्ज़ आप देखें यबसुतु, तो इसके अंदर अल्लाह सुबहाना ताला का बड़ा खूबसूरत नाम अलबासित है, अल्लाह ताला खोल देता है। इसी तरह आप देखिए यार रिस्क के अंदर आप देखिए तो अल्लाह ताला का नाम अर्रज़ाक है। फिर इसी तरह आगे आप देखिए यकदीरु के अंदर आप देखें तो अल्लाह ताला का नाम अलकादिर और अलकदीर है। सिर्फ आधे जुमले में अल्लाह सुबहान ताला की, और शुरू में लफ्ज़ अल्लाह भी है, तो अगर आप देखें अल्लाह यबसुतु रिस्क और यकदिर, चार लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो बराह रास्त अल्लाह ताला की सिफ़ात की तरफ लेके चलते हैं। तो अल्लाह ताला ने रिस्क का मामला अपने हाथ में क्यों रखा कि इंसान बगावत पे ना जाए? हम आगे पढ़ेंगे, कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर लोगों के हाथ में मैंने रिस्क के ख़जाने दिए होते ये बगावत करने लग जाते। दूसरी बात इस आयत से क्या पता चलती है कि जो मर्ज़ी कर लो रिस्क उसके हाथ में। आप अपने बच्चे पर थोड़ी सी तवज्जो करें, माँ जब अपने हाथ में चीज़ों को रखती है तो बच्चा जितनी मर्जी दौड़ धूप कर ले, कोशिश कर ले, ये दे दें वो दे दें, ये खाना है वो खाना है, लेकिन आप देखते हैं कि बच्चे को उतना ही मिलता है जितना माँ उसके लिए चाहती है, क्योंकि माँ को पता है कि उस वक़्त इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि तुम इस दुनिया में मगन हो, अल्लाह थोड़ा सा तुम्हारे साथ अलबासित बन के तुम्हारे रिस्क को बढ़ाता है, तो तुम क्या करते हो, तुम दुनिया में आके मस्तियाँ करते हो। फरीहू का लफ्ज़ यहाँ नागवार मानों में मगन हो गए हो, तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं, तुम्हारी दुनिया सामने आती है तो तुम्हें दीन पीछे लगता है, तुम्हारी दुनिया फटती है तुम्हारी आखरत सिमटने लगती है, तुम इस दुनिया के कामों को इतना अहम समझ लेते हो कि दूर पड़ी चीज़ के लिए भी तुम फिक्र आज से कर रहे हो और आज के दिन की नेकियों को तुम पीछे डालते हो। कभी हम सब अपने आप पर नज़र डाल के देखें, हम सब अपने आप को परख सकते हैं अपने दिल की हालत से। अल्लाह ताला ने ये बात कह कर के देखो दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ एक मता है, बरतने की चीज़ है, और आपको पीछे बताया था कि मता का लफ्ज़ कहते हैं यूज़ की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, पीरियड्स के कपड़े को, यानी वो कपड़ा जिस पे खैस का खून लग जाए उसको भी मता कहते हैं, यानी इतनी डिग्रेडेड दुनिया है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है नबी सल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया आखरत के मुकाबले में ऐसे है कि जैसे किसी समंदर में कोई उंगली डाले तो उंगली को लगने वाला पानी दुनिया है, और जो पीछे जिसकी कोई हद नहीं कोई इंतहा नहीं वो आखरत है। इसी तरह एक मौके पर नबी सल्लम सहाबा के साथ गुजरे और एक मुर्दा बकरी का बच्चा ज़मीन पर रखा हुआ था जिसके अंदर कीड़े चल रहे थे, बड़े बड़े कानों वाला, यानी हकीर। आपने रुक के पूछा तुम में से कोई है जो इसको लेना चाहे? साहबा बड़े हैरान थे कि हम कैसे ले सकते हैं, ये तो कोई पैसों का कैसे लेगा, कहा एक दिरहम में लेते हो? कहा अल्लाह के नबी इसको तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। तो फरमाया ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दुनिया व मा फीहा, जो इसमें सब कुछ है उसमें इस सब की मिसाल इस मुर्दा बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा नहीं। ज़रा लिखिए, हम आज हर उस चीज़ के पीछे फिर रहे हैं जो एक बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा नहीं है। हकदारों को हक नहीं देते, लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों के हक छीनने की कोशिश करते हैं, कभी माल कभी घर कभी जायदादों की सूरत में। क्या हम सारा दिन इस अकीर चीज़ के पीछे भागते हैं, फिर सोचते हैं कि अल्लाह की नज़रों में हमारी बहुत इज्जत हो, अल्लाह ताला हमें बहुत दे, ये कभी नहीं होगा। तो कुरान पढ़ने के दौरान अगर मेरे और आपके अंदर इस तब्दीली को मैं नहीं महसूस कर रही या आप नहीं कर रहे, तो याद रखिए कि ये बहुत ख़तरनाक होती है। ना चाहते हुए भी कुरान पढ़ने के साथ साथ दुनिया कम होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक विंडो बड़ी करते जाएंगे तो पहले से खुली हुई दूसरी विंडो छुपती ही जाएगी, और अगर आप उसको पूरा ही फुल स्क्रीन कर दें, 10 विंडोज आपके टीवी कंप्यूटर पे खुली होंगी, आपको सिर्फ वो नज़र आएगी जो सबसे ऊपर है। पूछिए, कुरान मेरी ज़िंदगी की डेस्कटॉप पे कहाँ है? क्या मेरी दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशों की नज़र तो मेरी ये विंडो नहीं हो गई? खुली भी है हम सब की। कोई मुसलमान नहीं कहता कि मैंने कुरान की विंडो नहीं खोली, लेकिन छुपी भी है। ऊपर इतनी विंडोज़ होती हैं, बाज़ दफ़ा आपने पहली चीज़ ढूंढनी हो, कई बटन बंद करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये खुली थी, मैं तो समझी बंद हो गई। ये है फरीगु बिल हयात दुनिया। इस तरह से ये लोग हैं कि जो दुनिया की ज़िंदगी पर रीच के थोड़े से फ़ायदे की खातिर इतना बड़ा फ़ायदा छोड़ दिया, क्योंकि इनको आखरत की ज़िंदगी के इनामात की उम्मीद नहीं है। इनकी कोशिश इस दुनिया के लिए, क्योंकि वो नज़र आती है और फिर इस पे मुतमईन भी हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे लोगों के अंदर अब क्या आदत आ जाती है, इसका जिक्र आज 27 में हम सब अपने ऊपर लेके देखेंगे। यानी आप इसको अगली आयत से यूँ जोड़ लीजिए कि जब दुनिया की ज़िंदगी बड़ी लगने लगती है तो फिर इंसान क्या करता है, फिर इंसान ज़ाहिर प्रस्त हो जाता है और निशानियाँ उसको फ़ायदा नहीं देती। कैसे? आयत 27, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, और कहते हैं ये काफिर लोग, لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ, क्यों नहीं उतारी गई इस शख्स पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से। हट धर्मी का मुजाहरा है, बार बार एक बात, इसको कहते हैं धान के बाद एक ही बात, आप पर कोई हिस्सी मोजा क्यों नहीं उतरा। वो कह चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शोभदाबाज की तरह जब चाहें कोई करतब दिखाएं, जो आप चाहें वो मांगें वो फौरन हाजिर कर दें, ये ले लीजिए, ये हासिल कर लीजिए, वो कर लीजिए। हालांकि नबी सल्लम ने कभी भी इन ज़ाहरी चीज़ों का वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह के मामलात करूँगा। लिहाजा याद रखिए कि जो ज़ाहिर प्रस्त लोग होते हैं ना, वो हमेशा निशानियों के पीछे लगे रहते हैं। जो अंदर की बसीरत से नहीं देखता, उसको बाहर की निशानियाँ भी फ़ायदा नहीं देती। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, आप कह दीजिए कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ, और सिर्फ उसी को हिदायत देता है जो उसकी तरफ रजू करे। बहुत ही खूबसूरत बात है इस एक आयत में। पहली बात डराने वाली है और दूसरी बात खुश करने वाली है। इस आयत का टॉपिक क्या है कि हिदायत किसको मिलती है। लोग कहते हैं कि हमें मौजज़े दिखाओ तो हिदायत आएंगी। लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिरेकल दिखा दो कि जिसको देख के मान जाएं कि आप बहुत है, कुछ है, दिस एंड दैट। अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं हिदायत उसको मिलती है मन अनाब, जो इसकी तरफ खुद रुजू करे। हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोलते हैं कि तुम्हें चाह नहीं तो हमें राह नहीं, तुम्हें हमारी चाहत नहीं है तो हमें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं आता, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर। और जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं, जिधर इंसान को चाहत नहीं होती वहाँ की राहें वो देखता भी नहीं है। यही हाल लोगों का हिदायत के मामले में होता है। बड़े गौर से समझने की ये बात है इस वक्त मेरे और आपके लिए, जो हम 14वीं सीढ़ी के पास पहुँचने वाले हैं। आप समझते हैं कि इस कुरान को पढ़ने के बाद हिदायत मिल जाती है? ये तो ऐसी बात है कि आप कंप्यूटर पर गूगल मैप खोल के देख लें और यहाँ से ईस्ट लंदन का रास्ता देख लें तो पहुंच गया आप ईस्ट लंदन। क्या ईस्ट लंदन के रास्ते की सड़कों का पता चलना, वहाँ कितनी देर में पहुंचते हैं, कितना लगता है, क्या वहाँ पहुंच जाते हैं? नहीं जाते। चलिए लिखिए कैसे पहुंचेंगे। निकलिए घर से, गाड़ी निकाली या किसी की गाड़ी में सवार हुए, फिर दूसरा उसका मरहला होता है कि सही रास्ते का इंतखाब करें। वो आपको दिखा रहा है कि इस साइड पे आप वेस्ट साइड पे मुड़ जाएंगे, 2 घंटे चलते रहे आप कभी भी नहीं वहाँ पहुँचेंगे। तो गोया कि दुरुस्त रास्ते का इंतखाब ज़रूरी है। चल पड़े, ठीक है, दूसरी भी निशानी पूरी हुई। तीसरी क्या उसकी सूरत होगी कि आप रास्ते की मुश्किलात की वजह से वो रास्ता ना बदल दें। ऐसे ही है ना, कहीं ट्रैफिक स्ट्रक है तो आप भी स्ट्रक हो लेकिन निकलेंगे नहीं, और उस रास्ते की सारी हर्डल्स को अबूर करके जब आप फिज़िकली वहाँ पहुँचें फिर आप कह सकते हैं कि मैं ईस्ट लंदन पहुँच गई। इसी तरह से कुरान खुला है इस वक्त आपके सामने। ये कुरान आपका गूगल मैप ऑफ जन्ना है, गूगल मैप ऑफ गाइडेंस है। बल्कि जन्ना को छोड़ें, गाइडेंस की बात करें, क्योंकि एक दिन सिरातल मुस्तकीम, हिदायत के रास्ते से गुज़र के इंसान जन्नत की मंजिल पे पहुँचेगा। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में हम बेहिदायते रहें और जन्नत मिल जाए, बस उनका वही हाल है कि जो चाहते हैं इस लंदन जाएं लेकिन निकलना नहीं चाहते। अब आप और मैं, हमने गूगल मैप खोल भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तस्दीक भी कर ली कि ये रास्ता ठीक है। फिर उसके बाद अब हम चल भी पड़े, अब हम कहाँ पहुँचे हैं, हम 13वीं सीढ़ी पे हैं। आप कह लीजिए कि यहाँ से हो सकता है 30 मील का सफ़र हो, तो हम अभी 13 मील चले हैं। क्या मिल गया इस लंदन? नहीं मिला। किस दिन मिलेगा? आखिरी दम तक, ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक अगर आप इस हिदायत की रोड पे नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके बरक्स आप देखिए कि जिन लोगों के दिल में तलब नहीं होती ना, सच्ची तड़प नहीं होती, वो ऐसी बातों पे अटकलें छोड़ते हैं। नबी सल्लम के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे इस रास्ते में कि आप सोचें तो आपका सीना चलनी हो जाए। हमारी ज़ात पे 4 लफ्ज़ क्या लगते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोई एक जुमला हमें पता चल जाए, किसी ने हमारे खिलाफ़ बोला या लिखा है, तो हम सर से पांव तक आग वाले हो जाते हैं। लेकिन नबी सल्लम के पास लोग आते थे, कभी कुछ कहते कभी कुछ। अबू जहल ये बात कह चुका था कि देखो ये तो मुकाबलेबाजी करते हैं हमसे, हम बनू हाशिम वालों के साथ हम हमेशा ही मुकाबले करते हैं, हम जो काम करते हैं ये भी करने लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब्दुल्ला बिन उमैया का तस्करा आता है कि उसने भी आकर एक दिन बैठ के अबू जहल के साथ बातें की कि ये क्या करता है, किसी तरह इसको जिच करो, कोई मुतालबा करो। फिर एक मुतालबा आके अल्लाह के नबी के पास किया कि ये मक्का का शहर बड़ा तंग है, आप ऐसा कीजिए ज़रा ये बड़ा हो जाए। इस किस्म की बातें करते, कभी कहते कि जी यहाँ बाग उग जाएं, यहाँ ज़रा सब्ज़ा हो जाए, हरियाली हो जाए, ज़रा आप मौजदा दिखाइए, ये पहाड़ों को ज़रा दूर तो कर दीजिए थोड़ा सा ताकि हमें चलना फिरना आसान हो। एक ने आके कहा, वो देखें आपको पता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ मुसख़र किए हुए थे, जब वो तस्बीह करते थे तो पहाड़ भी बोलते थे, ज़रा आप भी तो कोई ऐसा मौजदा दिखाएँ कि ये मक्का के पहाड़ आपके साथ बोलने लग जाए, आप कोई दाऊद से कमतर तो नहीं। किसी ने आके कहा कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाएं मुसख़र थी ना, बड़े बड़े फासले मुख्तसर हो जाते थे, आप भी ज़रा ऐसा करें कि शाम और यमन का सफ़र हमारे लिए आसान हो जाए। इसी तरह एक और मुतालबा था, कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे ना, तो ज़रा आप भी तो कीजिए, क्या आप किसी से कम हैं, आप हमारे दादा कुसई को ज़िंदा करके दिखा दीजिए ताकि हम उनसे ही पूछ लें कि आपका दीन सच्चा है कि झूठा है। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं मांगो और मांगो निशानियाँ, तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं होना, इसलिए कि तुम्हारे अंदर का बल्ब फ्यूज़ है। देखिए हम देखते हैं ना, आंखें देख रही हैं ना, लेकिन आंखों का पूरा सिस्टम अंदर है, अगर अंदर के सिस्टम में ख़राबी आ जाए ना तो ये आंखें नहीं देख सकेंगी। और इसी तरह बाज़ दफ़ा अंदर सब ठीक होता है, सिर्फ आंख के आगे एक पर्दा आ जाता है, तो भी डॉक्टर के पास जाके उस पर्दे को हटाते हैं ना। इसी तरह सूरज बाहर चमक रहा, आप और मैं इस सूरज की रोशनी में देख रहे हैं, कोई आंखें बंद कर ले तो क्या फिर वो उससे देख सकेगा? बिल्कुल नहीं देख सकेगा। यही कैफियत हिदायत की भी होती है। हिदायत का रास्ता तब तक दिखता रहता है जब तक अंदर की बसीरत भी हो और बाहर की बसारत भी हो, और अल्लाह कहता है कि तुम हिदायत को बाहर देखते हो, ये तो तुम्हारे अंदर होगी। हिदायत की एक नक निशानी है और वो क्या, अल्लज़ीना आमनु व तत्मईन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, आयत 28 में, कि अगर देखना चाहते हो तुम हिदायत पे हो के नहीं तो देख लो कि अंदर इत्मीनान कितना है। हिदायत पे होने की नक़द अलामत दिल का इत्मीनान, सुकून। इसलिए अगली आयत में अल्लाह ताला बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि अल्लज़ीना आमनु, पहली चीज़ ईमान, अमन देता है, सब चपकलश ख़त्म हो जाती है, इधर से उधर उधर से इधर नहीं भटकता, बस एक घूंटे से बंध गया, ये सुकून लग गया ना कि अब जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, जो ज़िंदगी में थी ठहराव आने लगता है। आपको पता है कि डबल माइंडेड कैफियत बहुत इस तरह आपकी कैफियत होती है। आमनु की सूरत में इंसान सारे खुदाओं का इनकार करके एक रब की ज़ात पर मुतमईन हो जाता है, फिर वतत्मईन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। दिल और रूह की तस्कीन का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह का ज़िक्र है। आप देखिए जो हमारा जिस्म है ना, ये कैसा है, अगर आप अपने जिस्म को देखें, अगले सबक में भी बात होगी, सूरत इब्राहिम की तो पहली आयत लेकर इसी के साथ ही समझ लें तो आपको वहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जिस्म जो है ना मिट्टी का बना हुआ है, और आपको ये पता है कि मट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, मट्टी के अंदर से लाइट पास नहीं होती, इसीलिए मट्टी के घरों में लोगों ने छोटे छोटे झरे बनाए होते थे कि सूरज की रोशनी अंदर आए। ठीक है, इस मट्टी के वजूद के अंदर अल्लाह ने एक लालटेन रखी हुई है और वो क्या है, तत्मइन्नु कुलूबुहुम। तो जिस तरह किसी चीज को नूरानी करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए इंसान कोई बल्ब जलाता है, कभी ट्यूब जलती है, कभी कोई रेजर आप शो करते हैं, इस तरह अपने वजूद के साथ इंसान मट्टी का वजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस मट्टी के वजूद को जो चीज नूरानी बनाती है वो अल्लाह का जिक्र है। सवाल पैदा होता है कि इत्मीनान क्या होता है। आपके जहनों में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ लफ्ज इत्मीनान आया है तो इत्मीनान किसको कहते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आपको अभी तक क्या लगता है कि इत्मीनान किस कैफियत का नाम है। फिर आप देखेंगे कि असल में जो इत्मीनान है वो मेरे पास है भी है कि नहीं है। तो इत्मीनान क्या होता है कि जिस चीज की तलब थी उसको पाने के बाद किसी और चीज की इंसान को जरूरत ना रहे। फिर समझ लीजिए कि इत्मीनान क्या है कि इंसान अपने मतलूब को पाकर फिर मुतमईन हो। बस आप देखिए कि पेट का इत्मीनान क्या है कि भूख की वजह से जो पेट में दर्द हो रहा था ना वो ख़त्म हो गया, अब और खाना आप नहीं खा सकते, इसको आप इत्मीनान कहेंगे पेट का। आंखों का इत्मीनान क्या था कि नींद से बोझल हो रही थी आपकी आंखें, फिर उसके बाद आप सो गए और जब आप सो के उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखें मुतमईन हो गई। जिस्म के जिस हिस्से की जो जरूरत थी वो इस तरह से पूरी हो जाए कि उसके बाद मजीद की जरूरत ना रहे, मजीद की ख्वाहिश ना रहे, इसको आप कहेंगे कि ये इत्मीनान की कैफियत है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब एक इंसान इत्मीनान के नाम पर इस तरह के हालात का शिकार होता है कि मेरा रब मुझे क्या दे जो मुझे चाहिए, उस वक्त आप देखेंगे कि आप अपने दिल के अंदर जो खुशी महसूस करेंगे ना उसको आप इत्मीनान कहेंगे। इत्मीनान का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, ये रूह की एक कैफियत का नाम है और रूह की कैफियत जो होती है ना वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। इसलिए जब इंसान की रूह को इत्मीनान मिलता है ना तो फिर उसकी बात होती है। अल्लाह सुब्हान तआला ने पिछली आयत में बात कर दी कि तुम हिदायत मांगते हो और अपनी मर्जी के तरीकों से मांगते हो, नहीं मिलेगी। आज इंसानियत ने इत्मीनान पाने के लिए अपने घरों को कबाड़खाना बना लिया। कुछ ने शॉपिंग में इत्मीनान पाना चाहा, उनको इत्मीनान नहीं मिला। कुछ ने म्यूज़िक के नशे में ख़ुद को खबोना चाहा, नहीं डाल सके। इसी तरह आप देखेंगे कि आज इंसानियत इस इत्मीनान को पाने के लिए क्या नहीं कर रही, लेकिन नहीं मिल रहा। इत्मीनान रूह की कैफियत का नाम है, इसको समझ जाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका दिल आपको गवाही देगा कि आप कहाँ हैं। इत्मीनान के जज्बात के कई शेड्स होते हैं, मसलन खुशी, सुकून, तहफ्फुज़, एतमाद, पायदारी का एहसान। जितना आपका दिल इन जज्बात के अंदर मुलव्वस होगा उतना ज़्यादा आप अपने आप को मुतमईन पाएंगे। अल्लाह ताला ने ईमान के साथ इत्मीनान को जोड़ दिया इसलिए कि ये दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। पहले अल्लाह के जिक्र को भी तो समझ लीजिए ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाही, अल्लाह का जिक्र क्या है। तो दो तरह से आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक क्या है, याद, रिमेम्बर। जैसे आप अपने जुबान में किसी को कहते तो मैं आपको याद ही कर रही थी, अब उसका ये तो नहीं मतलब कि आप उसके नाम की तस्बीह पढ़ रही थी, ख्याल आ गया ना, ध्यान चला गया, रिमेम्बर के माने में। ठीक है, हर वक्त अल्लाह को याद रखना। फिर दूसरा जिक्र जो होता है ना वो जुबान से उसके नाम का विर्द है। हदीस में आता है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी तरह कुरान को भी जिक्र कहा गया, सूरह हिजर आप पढ़ेंगे आयत नंबर 9 में आता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। आयत नंबर 14 है सूरह हिजर की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना तो उसे अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल पैदा होता है, और जिसको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल नसीब हो गया वो ना तो मुश्किलात में घबराता है और ना दुनिया की लज्जतों पर रीझता है। वो हर हाल में अल्लाह पर नज़र रखता है। मेरा अल्लाह इस वक्त मुझसे खुश है कि नहीं, मेरे इस काम से मेरा अल्लाह तो नाराज़ नहीं है। वो अपना मुहासबा करता है, फिर उसके दिल को एक सुकून और इत्मीनान मिलता है कि नहीं, मैं खुश हूँ, मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश है। और अगर लोग मुझसे नाराज़ हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं है। ऐसा बंदा फिर जब इस नेमत को पा लेता है तो फिर उसको किसी मौजज़े की ज़रूरत नहीं होती किताब की तरफ आने की। अल्लाह के ज़िक्र से ईमान मिल रहा है, इत्मीनान मिल रहा है, मौजज़ात से नहीं मिलता। ऐसे लोगों को फिर करना क्या है कि वो अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगियों को कैसे लगाएं? ये तो नहीं हो सकता कि आप सारा दिन कुरान पढ़ें, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये तो हो सकता है कि आप अल्लाह को हर वक्त याद रखें। किसी से मोहब्बत होती है ना तो इंसान उसको याद रखता है, हर वक्त उसके तरफ ख्याल होता है। इंसान अपने दिल पे उसको महसूस करता है कि कैसे मैं उसकी साथ देखूं, कैसे मेरा उसके साथ ताल्लुक जुड़े, कब मैं उसको मिलूंगी, यही कैफियत है। फिर इबादत, कभी तिलावत, कभी नफिल, कभी दुआएं, ये सब ईमान वालों की खुराक होती हैं। इनके दिल ख़राब चीज़ों से नहीं मिलते। फिर उनको अल्लाह के हुक्मों को मान कर बड़ी खुशी होती है। जो अल्लाह ने फरमाया वो कहते हैं, आपकी बात हमारे सर आंखों पर, हमारा दिल खुश होता है। इसके साथ फिर ईमान वालों का दिल इतना मुतमईन हो जाता है, इतना मुतमईन हो जाता है कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं। हम अपने आप से पूछें, आज मैं अपने दिल का क्या मामला पाती हूँ? अंदर एक गहरा सुकून है, खुशी का एहसास है? अगर है ना, तो फिर आप इसको संभाल के रखें। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान के दिल में ईमान भी हो और उसके बाद वो रिलक्टेंट भी हो, शक में आ जाए। जहाँ भी आप देखिए कि दुश्मन हम सब का जो है, उसने हमें दीन के रास्ते से दूर किया, शक पैदा किया। और वो शक उस वक्त शक नहीं लगता, यकीन लगता है। और उस बात के पर्दे में इंसान हिदायत के रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ चल पड़ता है और फिर सोचता क्या कि मैंने जो फैसला किया है वो बहुत बेहतरीन फैसला किया है। नुकसान क्या होता है कि इंसान अपने आप को हक से दूर होते हुए भी हक पे समझने लगता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की याद से सुकून क्यों मिलता है, इत्मीनान क्यों मिलता है? इसलिए कि अल्लाह ने पैदा ही उसको इसलिए किया। देखिए, जैसे भी बात की ना कि मैदे में खाना जाता है तो मैदे को सुकून मिलता है, आप कह सकते हैं कि मैदे की खुराक खाना है, लंग्स यानी फेफड़ों की खुराक ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ें जाती हैं ना, इसी तरह हमारे दिल की ग़ज़ा, फूड ऑफ द हार्ट, अल्लाह की याद है। बात वाजी, जो लोग अल्लाह की याद से दूर है ना, उनके दिल परेशान है। पीछे बात हो रही थी ये हिदायत के मामले में आपके साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इनको हिदायत इसलिए नहीं मिली कि अभी इन्होंने मन अनाब की कैफियत नहीं इख्तियार की। अगर आप लफ्ज़ अनाब को इत्मीनान से जोड़ लेना तो बहुत बड़ी बात समझ आती है। और वो क्या कि हिदायत उसी को मिलती है जिसको उसकी तलब होती है। बस आप देखिए, आप घर से निकली सब्ज रंग का कोई कपड़ा लेकर, आपको उसकी मैचिंग चाहिए, मिल जाएगी आपको सब्ज रंग की मैचिंग मिल जाएगी, क्योंकि आपको सब्ज रंग की तलब थी। हो सकता है उसी दुकान पे 8-10 सिस्टर्स और भी इधर उधर से आई हो, वो सब्ज रंग की तरफ नज़र भी नहीं भरेंगी, उनको नहीं दिखा, आपको क्यों दिखा? कभी ऐसा नहीं होता कि आप कोई कपड़ा लेते हैं तो घर से सोच के जाते हैं कि ये रंग का कपड़ा लूँगी, ये नहीं है, या ये लेना है, या वट एवर। आप उस दुकान में जाके जब देखते हैं तो आपको पूरी दुकान में से सिर्फ उस रंग के कलर्स नहीं दिख रहे होते। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे, यानी छोटे से मुराद की ऐसी लाशौरी की उम्र है, तो गाड़ियाँ आती रहती थी, फिर गाड़ी बदली तो एक गाड़ी सुर्ख ली ना अबू ने, जब हमारे पास रेड गाड़ी थी तो हम बच्चे थे ना, तो गाड़ियों में पीछे बैठ के देखते थे गाड़ी चलते में, तो हम देखते थे वो भी रेड गाड़ी, वो भी रेड गाड़ी। तो मुझे आज भी अपने लाशौर में वो जुमले याद है, हम बच्चों में से किसी ने बोले थे कि अबू सब ने रेड गाड़ियाँ ले ली हैं। उससे पहले कभी रेड गाड़ी नहीं सोची थी, क्योंकि अपनी गाड़ी रेड हुई तो रोड पे चलती हर गाड़ी रेड दिखी। बस यही है मनना, जिसको हिदायत की तलब होगी वो उसको मिलेगी। आप घर से गए ही नहीं हिदायत खरीदने तो हिदायत मिल जाएगी? आप तो गए थे फर्नीचर खरीदने कि आपको कपड़े मिल जाएंगे, इम्पॉसिबल है। घर वाले भी कहेंगे कि आप तो गई थी फर्नीचर लेने, कपड़े कैसे ले आई। तो ये आज हम अपने दिल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये दिल चाहता था कि अल्लाह को पाए, अल्लाह के रास्तों में आए। अल्लाह की याद जो होती है ना, उसको दिल की खुराक बना के देखें, आपको ये पैगाम मिलेगा कि निशानी मांगने वालों, हिदायत पर आकर तो देखो, निशानी तुम्हें अंदर मिलेगी। तुम अपने दिल से पूछोगे तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जुल्म करके दूसरों को आप खुश नहीं रहेंगे, बातिल पर खुश नहीं रहेंगे, अल्लाह से दूरी पर आपको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे खाना खा के जिस्म आराम करता ना, इस तरह दिल अल्लाह की याद से आराम पाता। कई लोग कहते हैं कि कुरान की क्लास में नींद क्यों आती है, उसकी वजह ही है। आप देखिए कि भाग दौड़ के काम कर रहे होते हैं ना घर में, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, चाको चौबंद सुबह से लगी हुई आप। ज्यों ही दोपहर का खाना खाया, ज़रा सूदा हुई तो क्या लगता आपको, जमाइयाँ आने लगती हैं। क्यों? कि आपके पेट को खाना मिल गया तो वो सोना चाहता है। और साइंस कहती है कि जिस्म क्यों सोता है, क्योंकि उसको खाना हजम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम काम दूसरे भी करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन उधर लगती है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए ये जो मसनून अमल है कैलूला 10-15 मिनट का, उसमें हकीकत है कि इंसान के असाब के लिए बहुत सुकून है। अब जब जिस्म को खाना मिला तो वो सोने लगा। अब हमारा हाल क्या, आप रात को जाग रहे थे, नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो ख़त्म हुई है। अब दोबारा क्या शुरू करें, अब क्या करें? अब कहते रात आंखों में कट रही, नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब रात को नींद नहीं आती तो लोग आपको मशवरा देते हैं, अच्छा आप ज़रा कोई अच्छी सी फिल्म शुरू कर दें। इधर आपने फिल्म चलाई, 3 घंटे गए, कब होश आता है? जब फजर में 1 घंटा रह गया, अब सोएंगे फिर, हाँ आंखों से नींद पटपट गुजर गई। इसके बरक्स जब रात को नींद ना आए, और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही ना, उठें वजू करें और जाए कुरान खोलें, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं आप जाग सकेंगे, आप यूँ सोएंगे, कुरान खुलते नींद आती। क्यों? कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिस्म को खुराक मिले तो वो सोता है। इस तरह जब हमारी रूह को खुराक मिलती है तो हमारी रूह को इत्मीनान मिलता है। ये है वो कैफियत जिसको आप कुरान की महफिल में महसूस किया करें। इर्द गिर्द से बेनियाज, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के अंदर झांक के देखें कि क्या मुझे कुरान पढ़ने के बावजूद तो बेसकूनी नहीं है। ये बड़ी फिक्र की बात है। ये तो ऐसे ही कोई कहे कि खाना तो खाती हूँ पेट नहीं भरता, सो के तो उठती हूँ लेकिन सुस्ती दूर नहीं होती, थकन दूर नहीं होती। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान जब अपने रब को पाले, उसको उसकी अजमत के साथ पाले, फिर उसको सुकून ना मिले। आप देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो हम सब से बहुत प्यार करता है। एक तो बात ये ना कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं फिर हमें इत्मीनान मिलता है। इसको दूसरी तरफ भी समझ लीजिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। आज इंसानियत को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अल्लाह ने छोड़ा हुआ है। जब अल्लाह इंसानों को तनहा छोड़ देता है ना, तो उसको सुकून नहीं मिलता। कैसे? छोटा सा एक मिसाल से समझिए। आप देखिए एक बच्चा किसी भी 2 मरले के घर में रहता है, कपड़े भी फटे हुए, कोई पता ही नहीं कपड़े क्या पहने हैं, छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है या दूध पीता बच्चा, जिस्म पे कोई मैचिंग कपड़े नहीं, कुछ नहीं, वट एवर जो भी चाहिए, लेकिन वो अपनी माँ की गोद में है। आप उस बच्चे के चेहरे पे क्या देखेंगे? खुशी, गुलकारियाँ मरेंगी। उसको क्या लगे मैंने मदर केयर्स का पहनना है या मैंने जॉनसन्स का पहनना है या बेबी सन्स का पहनना है, उसको ये पता है कि मेरी माँ की गोद में मैं हूँ। अब इसके ऑपोजिट आप सोचिए, एक बच्चा किसी बहुत पौश किस्म के महल में, घर विला बंगला, जिसको भी आप सोच सकते हैं कि जिसके अंदर एक इंसान अपने आप को पाता है। अब वो बच्चा जिसको हर तरह की आसाइश हासिल है लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं है, तो वो बच्चा खुश होगा? आप उसको टॉडलर दें, आप उसको न जाने बाहर की बनी हुई 4, 6, 10 चीज़ें झुंझुने दें, वो क्यों रोता है? कि उसको माँ चाहिए ना। बस इसी को समझ लें, अल्लाह हमें याद रखता है ना तो हम खुश रहते हैं, और जब अल्लाह हमें छोड़ देता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस याद के साथ हमारी खुशियों को रखा हुआ है। अगर हम अपने आप को इसके साथ पालेंगे, आप देखेंगे खुशी मिलेगी, इत्मीनान रूहानी कैफियत का नाम है। जिस्म की ज़रूरत पूरी होती है ना, तो ये इत्मीनान नहीं होता, ये आराम होता है। लिख के देख ले लफ्ज़, आराम, लग्जरी, रेस्ट। आप रेस्ट कर ले, बहुत थके हुए थे, थोड़ी देर आप लेट गए, आपने आराम कर लिया। लेकिन दिल तो नहीं खुश होता आराम के बाद भी, अगर दिल को कोई तकलीफ लगी हुई हो। इसी तरह आप देखिए, आपको भूख लगी, खाना खा लिया, दिल को गम लगा हुआ है। असल में ये सब कुछ कब होगा? जब हम अपनी रूह को पूरा करेंगे, उसके मुतालबे पूरे करें। इंसानों ने आज इत्मीनान कहाँ ढूंढा? कंज्यूम करो, पैसा खर्च करो, बाजार भर दिए, 10 किस्म के सीरियल है। चूज योर चॉइस, अपनी चॉइस का चूज करो। आज लोगों ने कुछ चीज़ों में खुशी चाहिए। नंबर एक, खूब शॉपिंग करो। अब आप सोचिए, जो बंदा शॉपिंग करके आता है, क्या उसको इत्मीनान मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आज 200-400 पाउंड खर्च कर आई हूँ, दैट्स इट, गुड, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। कंज्यूम करने से सिर्फ दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, और इत्मीनान तो यहाँ की चीज़ ही नहीं है। फिर आप देखिए, बल्कि और मुसीबत पड़ती है जब इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं, हमारे लिए जगह ही नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने गुल खिले मेरे आशियाने में कि कहीं जगह ना मिली मुझे, यानी इतने गुल खिले बाग में कि कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। आज हमारा ये हाल है, इतनी दुनिया जमा हो जाती है कि हमारे लिए जगह नहीं रहती घर में। हटा के चीज़ें थोड़ी सी रखनी पड़ती हैं बेड पे, जहाँ मैं सो सकूँ, क्योंकि सारा बेड तो कपड़ों से भरा हुआ है। पकाऊँ क्या, इतना जो सामने वही पका लुआ, अब कौन उलट पुलट करके फ्रिज फ्रीज़र को खोले, ये हाल हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि लोगों ने भारी पर्दे, फर्नीचर, उनका नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे भारी पर्दे मिल गए, मैं बहुत मुतमईन हूँ, फर्नीचर अच्छा, बर्तन खूबसूरत, नहीं मिला, जहर लगती हैं वो चीज़ें। हकीकी खुशी तो लोगों के पास है ही नहीं, हम उनसे मांगते हैं। मस्नूई मुस्कुराहटों के पीछे कभी तफक्कुरात की झलकियाँ देखा करें। झुरियाँ पड़ जाती हैं जवानों के चेहरों पे, इस दुनिया के अंदर पूरे पूरे हाथ उनके डूबे होते हैं, लेकिन चेहरों पे परेशान है, बाहर से आप देख सकते हैं। आज लोगों ने क्या नहीं किया, हर चीज़ सजा लो, मैचिंग कर लो तो बहुत फोकस होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सच कि आपके कमरे में अगर 6-7-8 रंग की चीज़ें हैं, पर्दे एक रंग के, सोफ़ा दूसरे का है, बेडशीट तीसरे की है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप सब एक रंग का कर लें, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन क्या ये सब होते करते ने के बावजूद सुकून मिला? आप उसको अवॉइड कर लें, आपके अंदर आग लगी भी आपको सारा कमरा काला लगेगा, आपके अंदर जज्बात उभरे में आपको सारा रंग जो सुर्ख दिखेगा, खून उतरता हुआ दिखेगा आपको। एक चीज़ जिससे सुकून मिलना था, वो अल्लाह की याद है, आज उसको इस डिक्शनरी से निकाल ही दिया। आप आज देखिए कि जब हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं, हमसे मुराद दुनिया में चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, हम तो उन्हीं को कहेंगे ना अपना, लोगों को नहीं मिला। फिर एक चीज़ जिसमें लोग और सुकून लेते हैं, ढूंढते हैं, मिलता कोई नहीं, वो क्या है? नशा। आप दो किरदार बना लें, ऐसे लाइन लगा लें अपने नोट्स में, एक परेशान शख्स है, यानी दो डिप्रेशन के मरीज आपके सामने आते हैं, एक को आप फ्राइड के नज़रियात की रोशनी में डील कर रहे हैं, जिसमें खुदा का नाम ही नहीं है। कैन यू बिलीव कि जब अल्लाह का नाम ही नहीं है किसी चीज़ में, तो आपको सुकून कहाँ से मिलेगा? आज इस्लाम के नाम पर साइकोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो मैं सोच सकती हूँ कि उस बंदे को सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाएगा। एक नया सब्जेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है बच्चों की स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, जिसको इस्लामिक साइकोलॉजी का आप नाम दें। फ्राइड ने बहुत कुछ बताया, उसमें 30% ठीक होगा, 70% ठीक कैसे हो सकता है? देखिए, वो खुदा को मानता ही नहीं है, तो वो साइकोलॉजी जिसमें अल्लाह का नाम ना, उसका मतलब पता क्या है? जिसको एक क्लास बोलूंगी तो आप हंसेंगे कि डिहाइड्रेटेड वाटर। कभी ये कोई कह सकता है कि ये पानी है जिसमें पानी की कमी हो गई? इम्पॉसिबल है ना। पानी में पानी ना हो तो वो प्यास क्या बुझाएगा? तो वो साइकोलॉजी जिसमें पैदा करने वाले का नाम ना हो, वो इंसानियत को खुशी कहाँ देगी? इसके लिए हमारा ब्रेन चाहिए, मुस्लिम ब्रेन, जो कुरान भी पढ़ चुके हों, फ्राइड की साइकोलॉजी भी पढ़ चुके हों, फिर उसकी रोशनी में लोगों को ट्रीट करें। आपको तो पता नहीं, शायद कम मौका मिलता होगा, मैं सोचती हूँ जो डिप्रेशन के मरीज नॉन मुस्लिम से आज इस दुनिया में है, चलें हमें तो फिर भी कुरान से दम दुरूद से कुछ ना कुछ हम अपने अकीदे के मुताबिक सुकून ले ही लेते हैं तकलीफ़ों में, ये गरीब किधर जाते हैं? फिर नुकसान क्या होता है कि वो कभी नशे में आते हैं, कभी कुछ कहीं कुछ। चलिए करके देख लीजिए, दो डिप्रेस मरीज़ हैं, एक वो है जिसको दुनिया और ये सब कुछ और दूसरी तरफ अल्लाह की ज़ात। पहले ने नशे में सुकून ढूंढा, क्या होगा, नशा उतरा सुकून ख़त्म, फिर नशे के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे। नशे की वजह से उसका स्टमक अपसेट होगा तो मैदा भी ख़राब होगा। शराब, कहते हैं ना कि शराब के नशे में धुत पीते हैं, पी लीजिए आप, कितने दिन पियेंगे, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए कि ना उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा इस गम का, ना रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि जो ही नशा ख़त्म और अजियत होगी। नशा ख़त्म, गम शुरू, ये एक सिर्फ फरार की कैफियत होती है। लोग कहते हैं तेज़ म्यूज़िक सुन लो, तीसरा इलाज कोई कहता है चलो म्यूज़िक के नशे में डुबो दो, चलो डुबो, सर में दर्द भी शुरू हो जाएगा जो नहीं हो रहा था। लिखते जाइए जिस चीज़ में, उसको मॉल में छोड़ाओ, बाजारों में छोड़ाओ, उसको वीडियोस दिखाएं, वो और हीरोइनों को देख देख के जले कुड़ेगी, ये इतनी प्यारी है मैं ऐसी क्यों नहीं, इस फिल्म में तो हीरो इतना प्यार करता है, देखो मेरा तो बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया। यही गम है ना आज के दौर के, और क्या गम है इनको, आटे चावल का गम तो नहीं है या कर्जों का गम है। नतीजा क्या होता है कि ऐसी चीज़ों में मुलविस शख्स जो होता है वो अपने आप को और ज़्यादा डिप्रेस फील करता है दूसरों से टैली करके। अब आप दूसरी तरफ लीजिए, एक शख्स परेशान, कोई भी गम आ सकता है ज़िंदगी में, डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, सबसे बड़ी वजह तो ईमान की कमी है। ये वो ज़रा लिस्ट बताने से पहले आपको वजह भी तो बता दूँ कि डिप्रेशन होता किसको है। लिख लीजिए, अगर डिप्रेशन है तो ईमान नहीं है, ईमान और डिप्रेशन साथ नहीं चल सकता। सहाबे कराम को मिसाल बना लीजिए, क्या कुछ नहीं उन पर हो गुजरा, 70 रिश्तेदारों की लाशें उनको इकट्ठी उठानी पड़ी उहद में। कोई एक छोटी सी रिवायत ला के दिखा दे कि उस 2-4 सहाबा डिप्रेशन में चले गए, वो डिप्रेस नहीं होते थे। मक्का में इल्ज़ामात, बहतान, कतअ रहमी, तलाकें, घर में झगड़े, बीवियां शोहर जुदा, बच्चे माँ बाप के नाफरमान, कहीं डिप्रेशन नहीं। कभी आप नहीं पढ़ेंगे कि उम्मे सलमा डिप्रेशन में चली गई जब उनको उनके बच्चे और उनके शोहर से जुदा कर दिया गया, ज़ैनब डिप्रेस हो गई जब उनको उनके शोहर से अलग कर दिया गया, आप नहीं सुनेंगे। ग़ज़वाए अहज़ाब होता, अल्लाह के नबी बुलाते, भाई किधर हो, आओ जल्दी से, खंदक होते, पता चले एक डिप्रेशन का मरीज़ हो गया, एक स्ट्रेस में चला गया, एक टेंशन में चला गया, एक को स्ट्रोक हो गया, कभी सुना आपने? थोड़ी सी सीरत तो अब आपकी भी दोस्तियाँ हो गई हैं ना। तबूक के सफ़र में कभी किसी को डिप्रेशन हुआ? क्यों नहीं होता था उनको डिप्रेशन? इसलिए कि उनके अंदर इत्मीनान था, उनको अजर की उम्मीद थी। देखिए उम्मीद जो होती है ना वो इंसान को टूटने नहीं देती। आज हालात ख़राब है, कल ठीक हो जाएंगे, नतीजा क्या होता है कि इंसान खुश होता है। इमाम इब्ने तैमिया को जेल में डाल दिया गया और कहते थे इन जन्नती माई, मेरी जन्नत मेरे अंदर है, जेल में छोड़ो कुएं में डाल दो, क्यों नहीं डिप्रेशन हुआ हज़रत यूसुफ को कुएं में? हज़रत याकूब अपने बच्चे की याद में डिप्रेस क्यों नहीं हो गए? मदीना में क्यों कोई पागलखाना नहीं था, क्यों कोई साइकेट्रिस्ट वहाँ नहीं पलता था? ये तो आज से कोई 20 साल पहले चले तो हमारे पाकिस्तान में भी नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे, कि ये साइकाट्रिस्ट और फलाना थेरेपिस्ट और फलां फलां और दिस फिजियो शिजियो, ये आज के इस लादीन और बेखुदा मजहब और इस कल्चर के तोहफे हैं। दिल को चाहिए सुकून, अल्लाह की याद, उससे दूर। आज रोने को दिल चाहता है, वल्लाही अगर वाकई ये बात सच ना हो कि अल्लाह पे है कि जो फिर नहीं, जिसको हिदायत मिलनी फिर ना मिले, मेरा तो कई ऐसे लोगों के हालात देखकर दिल दुखी हो जाता है कि जिनको ज़रूरत इधर आने की है और वो डिप्रेशन का मरीज बन के घरों में पड़े, कोई उठा के ले आए ना उनको ज़बरदस्ती, जैसे हॉस्पिटलों में भी तो ले जाते हैं ना, एम्बुलेंस बुलाते हैं तो फिर मरीज जाता है ना। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, आप उनको ले गए ना, तो आज वो पढ़ गए हैं ना माशाल्लाह। मैं कहती उठा के लाना पड़े ना किसी को तो ले आइए, हम कहते नहीं इनको आराम करने दो, ये डिप्रेस हैं, ये थके हुए, ये उदास हैं। अल्लाह की कसम खाऊंगी एग्जैजरेशन से, अल्लाह मुझे बचा ले, 101 बीमारियां आज के दौर की गिन लें, जिसमें साइकिक, नफ्सियाती, जिस्मानी सुस्ती, आजजी, और बदतमीज़ी और गुस्ताखी और जो आज के यंग्स और ओल्ड सब के मसले, सब का इलाज एक है कि ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आपके नमाज़ें तो हम पढ़ते हैं, खाक नमाज है जिसमें अल्लाह से एक दफ़ा भी सामना नहीं होता। या का ना बुध या का नसें, कौन है भाई, तू कौन है, बस अम्मा ने सिखाया था बचपन में ये नमाज में पढ़ना। अगर हमारी नमाज भी ज़िंदा होती ना आज, तो कम अज़ कम डिप्रेशन ना आज होता। कोई मर जाता है ख़ानदान का, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई आपका क्या ले गया, आपको तो दे ही गया। जाने वाला तो कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, अगर उसकी ज़िंदगी की बिलोंगिंग्स है, माल ना छोड़े ना तो जोड़ा जोड़ा बट जाता है बहनों भाइयों का, ये मेरी बहन को दे देना ये उसका जोड़ा है, ये मेरी सास की जूतियाँ ये उसके कड़े हैं, चीज़ें दे के ही जाते हैं, आपसे ले के कुछ नहीं जाते। तो लिहाजा सुकून वहाँ ढूंढे जहाँ जाना। एक इतना बड़ा शख्स था, इस वक्त मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, एक इतने बड़े जजीरे का मालिक था, स्कॉर्पियो उस जजीरे का नाम था, उसकी बेटी करोड़ों के ये मालिक, और आखिर में उसने ख़ुदकुशी की। क्यों? क्योंकि दिल अल्लाह की याद से खाली था। एक हदीस का खुलासा है कि लोग दुनिया में आराम और चैन ढूंढते हैं जबकि वो अल्लाह की याद में है। आप सारा वीकेंड उछलें कूदें मस्ती करें खाएं पिएं कुछ भी करें, मैं कसम खा के कह सकती हूँ जो सुकून आपको कुरान की क्लास में मिलता है वो आपको किसी खुशी में नहीं मिल सकता। जाएं आप इस कुरान को छोड़ें, फिर देखें आप किधर धक्के खाते हैं। अच्छे कपड़े भी खुशी नहीं देंगे। मैंने इतने प्यारे कपड़े पहने हुए लड़कियों की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे छोटी सी बात पे। ये चीज़ ऐसे सोची थी, ये कांटा टूट गया, ये बुंदा टूट गया, ये बाली टूट गई है, इस पे सारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जिसको आप कहते हैं कि ये बहुत इस वक्त प्यारा लग रहा है, वो उससे पूछिए उसके दिल में उस वक्त कितने गम हैं। तो लिहाजा हम अपने ऊपर जुल्म करने से बाज आ जाएं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप देखिए कि हम जिस्म से नहीं बने, हमारी रूह भी है। सूरह बनी इसराइल आयत 85 में हम पढ़ेंगे, वयसअलूनक अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, बोले रूह मिन अम्री रब्बी, रूह तो अल्लाह का हुक्म है, तो इस रूह की भी हिफाजत करनी है, सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करनी।
अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب